नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ प्रचार अभियान चरम पर। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कुवैत के अमीर ने अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में 21 अप्रैल तक गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 25 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं नईम अख्तर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज हो गया है। मतदान के केवल 2 दिन बचे हैं। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में 17 राज्यों की 102 लोकसभा सीट और सिक्किम विधानसभा की 32 तथा अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी असम में एनडीए उम्मीदवारों के प्रचार के लिए आज शाम गुवाहाटी पहुंचेंगे। श्री मोदी कल नलबाड़ी में एक रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज जोरहाट में पार्टी उम्मीदवार गौरव गोगोई के समर्थन में रोड शो करेंगी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस सप्ताह बराक घाटी में चुनाव प्रचार करेंगी। असम में 14 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में बिहार के पूर्णिया और गया में आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनावों के पहले चरण में 19 अप्रैल को गया में मतदान होगा, वहीं पूर्णिया में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। श्री मोदी बालूरघाट संसदीय क्षेत्र से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार के पक्ष में बालूरघाट रेलवे मैदान में विजय संकल्प यात्रा को संबोधित करेंगे। बाद में वो रायगंज में एक और जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तमिलनाडु के कृष्णागिरी और तिरुवन्नामलाई में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे और रोड शो करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में उत्तराखंड में प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार अभियान तेज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कोटद्वार में आज दोपहर बाद जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गढ़वाल लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस की ओर से गणेश गोदियाल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दीमापुर में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए नागालैंड जाएंगे। मध्य प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी गति पकड़ रही है।
वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज छिंदवाड़ा में रोड शो में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित भाजपा के अन्य नेता भी विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। उधर खजुराहो लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी आरवी प्रजापति को समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के प्रचार में जुटने के बाद अब युवक कांग्रेस ने भी पार्टी के घोषणा पत्र को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए घर घर अभियान शुरू किया है। वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 15 उम्मीदवारों ने 19 नामांकन पत्र जमा किए। अब तक 22 उम्मीदवारों द्वारा 27 नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
मेघालय में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। मतदान में अभी करीब 1 सप्ताह का समय बाकी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि चुनाव में जहां राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार में जुटे हैं, वहीं चुनाव आयोग भी अधिक मतदान के प्रयास कर रहा है।
चुनाव आयोग ने खासी गारो और जयंतिया बोली में शॉर्ट फिल्में बनवाई हैं। इन फिल्मों के कलाकार स्थानीय बोली भाषा में संवाद अदायगी करके मनोरंजक अंदाज में लोगों को वोट डालने का संदेश दे रहे हैं। इसके अलावा मेघालय में बेहद लोकप्रिय फुटबॉल खेल के मैत्री मैचों का आयोजन करके भी नौजवानों को मताधिकार का उपयोग करने का संदेश दिया जा रहा है। विभिन्न स्कूल और कॉलेजों में तकनीकी सेशन आयोजित करके विद्यार्थियों को वीवीपैट वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल की जानकारी दी जा रही है। परितोष दीक्षित, आकाशवाणी, शिलांग।
लोकसभा चुनाव की विशेष श्रृंखला के तहत आज हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी संसदीय क्षेत्र की। इस क्षेत्र में मतदान पहले चरण में 19 अप्रैल को होगा। इस निर्वाचन क्षेत्र में 18 लाख से अधिक मतदाता हैं। इनमें महिला मतदाताओं की संख्या 8 लाख से अधिक है। ये अनुसूचित जाति की एक आरक्षित सीट है। इसमें 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
जलपाईगुड़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 1900 मतदान केंद्र हैं। चुनाव आयोग ने 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों और 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। केंद्रीय और राज्य बलों की उपस्थिति में मतदान कराया गया। आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न भागों में आयोग बड़ी संख्या में मतदान कराने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को लुभाने के लिए जनसभाएं और रोड शो कर रही हैं। जलपाईगुड़ी से कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
लोकतंत्र में चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और अधिक से अधिक लोगों को वोट देने की सुविधा के लिए पूरी व्यवस्था होती है। नागरिक कभी कभी एक दूसरे को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त प्रयास भी करते हैं। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2019 के संसदीय चुनाव में केरल की मैरी एक अनोखा सुझाव लेकर आईं। सिर्फ वोट देने की बात करने के बजाय उन्होंने पौधे बांटे। मैरी का यह विचार लोगों को पसंद आया और उन्होंने मतदान के बाद अपने अपने इलाकों में पौधे लगाए। मैरी के विचार ने न केवल क्षेत्र को हरा भरा बनाने में मदद की बल्कि मतदान प्रतिशत को भी बढ़ाया। मणिपुर के विष्णुपुर इलाके के 102 वर्षीय निवासी नियाज अली भी एक उदाहरण है। वह युवा मतदाताओं को देश के भविष्य के बारे में सोचने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करने में विश्वास रखते हैं। दुर्गेश भदौरिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
उच्चतम न्यायालय ने कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया। केजरीवाल ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी की हिरासत से रिहाई की मांग करते हुए ये याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत 29 अप्रैल को इस मामले की दोबारा सुनवाई करेगी। न्यायालय ने ईडी का जवाब मिलने से पहले अंतरिम रिहाई की उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इसके साथ ही दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। ओडिशा के जाजपुर जिले में एक बस के पुल से गिर जाने से एक महिला सहित कम 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 35 से अधिक लोग घायल हो गए। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर हुआ जब पुरी से पश्चिम बंगाल के हल्दिया जा रही बस बाराबती पुल से नीचे गिर गई। घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए कटक के अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने बताया कि चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बस हादसे में हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों के लिए 3-3 लाख रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। प्रसिद्ध संगीतकार के जी जयन का आज सुबह कोची के त्रिपुनिथुरा में निधन हो गया। वो 90 वर्ष के थे। अपने भक्ति गीतों के लिए जाने जाने वाले जयन ने 1000 से अधिक गीतों की रचना की और कुछ मलयालम और तमिल फिल्मों के संगीत निर्देशक रहे हैं। पद्मश्री से सम्मानित जयन को केरल संगीत अकादमी और हरिवसारसनम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मलयालम अभिनेता मनोज के जयन उनके छोटे बेटे हैं। कुवैत के अमीर ने अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये निर्णय 7 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा के इस्तीफे के बाद लिया गया है। 4 अप्रैल को नई संसद के चुनाव के बाद शेख मोहम्मद ने 6 अप्रैल को अपनी कैबिनेट का इस्तीफा सौंप दिया था। शेख अहमद की नियुक्ति एक नई संसद के चुनाव के बाद हुई, जो दिसंबर 2020 के बाद से चौथी बार है। नए प्रधानमंत्री 1999 से 2005 तक वित्त और संचार मंत्री रहे, जबकि 2006 से 2011 तक स्वास्थ्य मंत्री, तेल मंत्री और सूचना मंत्री के रूप में कार्य किया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में इस महीने की 21 तारीख तक आंधी और गरज के साथ मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ भागों में अगले 6 दिन तक ये स्थिति बनी रहेगी।
उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों में इस महीने की 18 से 21 तारीख तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में 18 से 21 तारीख तक गरज और बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। साथ ही पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गोवा, गुजरात और कर्नाटक में आज और कल तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और आंध्र प्रदेश में अगले 4 दिनों तक मौसम गर्म और उमस वाला रहेगा। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
आईपीएल क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 25 रन से हरा दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने बेंगलुरु की टीम को 288 रन का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 262 रन ही बना पाई। आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। शतरंज में भारत के डी गुकेश कनाडा के टोरंटो में फिडे कैंडिडेट्स 2024 के 10वें दौर में इयान नेपोमनियाची के साथ मैच बराबर करके शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। इस बीच विदित गुजराती भी अपने साथी खिलाड़ी आर प्रज्ञानानंद के खिलाफ मैच बराबर करने में सफल रहे। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
धन्यवाद नईम। आम चुनाव में धनबल पर लगाम कसने के लिए चुनाव आयोग की व्यापक मुहिम को आज सभी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने मुखपृष्ठ पर दिया है मतदान के प्रथम चरण से पहले ही 4,650 करोड़ की जब्ती। इसी खबर को हरिभूमि ने शब्द दिया है लोकसभा चुनाव 2024 टूटे सारे रिकॉर्ड, मतदान से पहले पहली बार 4,650 करोड़ रूपये जब्त। केजरीवाल को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, दैनिक भास्कर समेत सब अखबारों ने सुर्खी दी है। नवभारत टाइम्स लिखता है केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा। न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिशों पर पूर्व जजों ने प्रधान न्यायाधीश को लिखा पत्र, ये खबर दैनिक जागरण और लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। हिंदुस्तान की प्रमुख खबर है इसराइल पर संयम बरतने का दबाव, अमरीका बोला युद्ध हुआ तो वो साथ नहीं देगा। राजस्थान पत्रिका की खबर है स्पेस वॉर, अंतरिक्ष में पहले युद्धाभ्यास की तैयारियों में जुटा अमेरिका, 620 लाख डॉलर होंगे खर्च। इस साल झमाझम बरसेगा मॉनसून, देश में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान, दैनिक ट्रिब्यून सहित सभी अखबारों की अहम खबर है। खेलों के हवाले से दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर खबर दी है आईपीएल में टूटा एक मैच का सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ प्रचार अभियान चरम पर, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कुवैत के अमीर ने अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में 21 अप्रैल तक गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 25 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।